अब अगली आयतों में शैतान की स्पीच जो वो क्यामत के मैदान में खड़ा होके देगा। रिवायात में आता है कि जब क्यामत के दिन लोग देखेंगे कि नेक लोग अंबिया की सिफारिश कर रहे हैं और अंबिया उस उनके हक में सिफारिश कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, तो गुनाहगार लोग आएंगे शैतान के पास, कहेंगे हम तो सारी जिंदगी तेरी बात करते रहे, उठा आज जरा हमारी भी मदद कर। वो देख फलां नबी फलां के साथ जा रहा है, फलां नबी अपनी कौम की सिफारिश कर रहा है, वो उसके साथ जा रहे हैं, अब बता हम किधर जाएं। खैर वो कैस सुनकर उसको उठाएंगे। बड़ी तफसीली रिवायत है, पढ़ लीजिएगा इसकी तफसीर में, किसी किताब में भी पढ़ लें। हदीस में तो शैतान अपनी जगह से उठेगा, इतनी बदबू उठेगी उसकी महफिल से कि कभी ऐसी बदबू ना उठेगी। और उठ के स्पीच क्या करेगा, आइए सुनते हैं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा और शैतान कहेगा, हकीकत है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे। आज शैतान सच बोल रहा है, क्यामत के दिन जाकर दुनिया में झूठे वादे करता है। और जितने वादे मैंने किए थे उन तुमसे, उनमें से कोई भी पूरा ना किया। पहले सच बोलेगा, फिर एकदम बात बदलेगा, हाँ मेरा तुम पर कोई जोर भी तो नहीं था, आई डिडंट फोर्स यू, मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं कहा कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बाई का। तुम पहले से तैयार थे, खुश थे, तुम तो पहले से तैयार बैठे थे, दावत नामा मिले, बच्चों को लेके पहुंचते हैं, क्या फन होगा, कैसी नाइट गुजरेगी, कैसा मजा आएगा, तुम तो चल पड़े। याद रखिए, हर गुना शैतान का दावत नामा है, या शरीयत या शैतान, या रहमान या रजीम, इन दो में से एक रास्ता खुद को चूज करने के लिए इंसान ने ढूंढना है। जब अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलते तो खुद बखुद शैतान के रास्तों पर चलते हैं। और अब जरा सुनिए, वो कैसा तोता चश्म है, आंखें फेर रहा है, कहने लगा अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, यहां ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं ना तुम मेरी कर सकते हो। पता चला कि फंसा हुआ वो भी है। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं इससे बरी उज़िमा हूं, ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। अब बताइए कि क्या करेंगे वहां लोग जिन्होंने आज शैतान की आस पे कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उसको पकड़ाएंगे तो आज आंखें खोलनी। और अल्लाह का कितना रहम है कि उसने कुरान में ये बात पेश कर दी। इसके बखिलाफ अब एक और लोगों का जिक्र है, ये भी आयतें बड़ी खूबसूरत हैं। फ्रूट्स ऑफ ईमान अगली आयतों में इसी में आएगा कि अब एक तस्वीर का दूसरा रुख है, अल्लाह हमें इनमें कर ले। बहुत बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे और वहां इनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। दुआ करें अपने और अपने साथियों के लिए, अल्लाह मजलना मिनहुम, अल्लाह में उन्हीं लोगों में करना। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज से मिसाल दी? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाहें आसमान तक पहुंची हुई हैं, हर आन अपने फल दे रहा है। ये मिसाल अल्लाह ताला इसलिए देता है कि लोग इससे सबक लें। और कलमे खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौले साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखरत दोनों में साबित कदमी अता करता है और जालिमों को अल्लाह ताला भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है कि वो जो चाहे करे। ये है वायते जिसके ऊपर हम दो टॉपिक करते हैं, इस्लाम ए टू जी और फ्रूट्स ऑफ ईमान। आपको दोनों कई मुख्तलिफ फॉर्म्स में मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर मुमकिन हुआ तो। एक तो आपको प्रेजेंटेशन भेजेंगे, बहुत ही खूबसूरत पावर पॉइंट है कि कैसे इस्लाम कतरा कतरा करके दिल में आता है। दरख्त जैसे बीज से शुरू होता है, मट्टी में जाता है बीज, फिर उससे कोम्पल उगती है, फिर उसके बाद स्टैम्प उगता है, फिर स्टैम्प से आप देखिए कि शाखें हैं, शाखों पे पत्ते हैं, फिर कहीं फल है। इसी तरह इस्लाम दिल में अल्लाह की मोहब्बत से शुरू होता है, फिर दिल की मट्टी है, फिर वहां से स्टैम्प निकलता है, ये फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है। फिर वहां से शाखें हैं जो मामलात हैं, जो हमारे एक दूसरे से ताल्लुक हैं, इखलाक के पत्ते हैं, फिर कई फ्रूट्स हैं जो इस्लाम से हमें फायदे मिलते हैं। तो ये सुनने के लायक टॉपिक है, बहुत दफा हुआ। अगर फ्रूट्स ऑफ ईमान का कोई लिंक हुआ पुराना तो वो इनको दे देंगे इंशाल्लाह ताला। 21 मुख्तलिफ फ्रूट्स ऑफ ईमान हमने इन आयतों पे किए हुए हैं कि ईमान के बाद मिलता क्या है, तो इंशाल्लाह इससे फायदा लेकर अपना भी फायदा करना है और दूसरों का भी। फिर आगे ना कदरियों और ना शुक्रियों की बात है। अलम तरा इलल्लज़ीना बदलल्लाहु निअमतल्लाहि कुफ्रा, तुमने इन लोगों को देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई, कौन सी नेमत? लिख लीजिए रसूल, और इसे कुफराने नेमत से बदल दिया और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे चाहेंगे। वो बदतरीन जाय करार है। अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर दोजख में जाना है। ऐ नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं, कह अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले। इनसे कह दो कि नमाज कायम करें, जो कुछ हमने इनको दिए इसमें से खुले और छुपे राखे खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी ना दोस्त नवाजी होगी। कभी कोई नोट ऐसा हो कि जिसको एक्सपायर होना है, तो हमारी क्या ख्वाहिश होगी? उसको खर्च कर लें, और खर्च करा नहीं होगा तो बाद में वो कागज का टुकड़ा है। इसी तरह आज मेरा जो माल अल्लाह के रास्तों में लगता है, अल्लाह के बंदों पे लगे, अल्लाह के दीन पे लगे, किसी दीनी काम पे लगता है, अल्लाह के बंदों के फायदे की खाने पीने पे लगता है, वो सब अल्लाह ताला के हाँ कर्ज है। अल्लाह ताला कहते हैं बाद में नहीं होगा। और मैं सोचती हूँ कितनी तेजी से रमजान गुजर रहा है ना, अगर कोई नोट बचा खुचा रह गया रमजान के बाद खर्च किया तो पता चला कि बाय 169 फ्री की सेल खत्म हो गई। कितना दुख होता है, एक ही दिन के फर्क से बाद लोग सेल में जाते हैं तो पता चलता है कल सेल खत्म हो गई। तो इस रमजान की नेकियों से फायदा उठा लें हम सब, ताकि कल की हसरत से बच सकें। अल्लाह वो ये जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से तुमको रिस्क पहुंचाया और तरह तरह के फल पैदा किए। इसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में इसके हुक्म से चले, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। है ये सब चीजों का एहसास हमें? जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। वाताकुम मिन कुल्ली मा सअल्तुमूहु, तो फिर वाइन तौद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करो, नेमते नहीं, एक नेमत, देखने की नेमत, सुनने की नेमत, खाने की नेमत, बच्चों की, शौहर की नेमत, एक नेमत को भी गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत एक इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। यहां देखिए बार बार एक तकरार आई है सखरा की, सखरा लकुम सखरा लकुम। तो सखरा कहते हैं किसी को बगैर मुआवजे पर काम पर लगा देना। एक जुमला बोल दूं, कम हंसिएगा। मैं जब शौहरों को बाहर इंतजार करते बेगमात का देखती हूं तो मुझे यही आज याद आती है, कैसे अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। बेचारे आधी आधी रात तक बाहर खड़े और बेगमात बातें कर रही हैं अंदर। तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ने इनको कैसे मुसख्खर कर दिया। गुस्से में आए गाड़ी लेके चले जाती रहना जिसके साथ मर्जी। कई दफा कहेंगे भी छोड़ के चला जाऊंगा बाजार में से, फिर भी आप शॉपिंग करती रहें करती रहें, कोई नहीं जाते छोड़ के। ये अल्लाह की नेमत है ना। तो अल्लाह ने जैसे बेजान चीजों को हमारे कामों में लगाया, इस तरह रिश्तों को भी हमारे लिए डाला। इन रिश्तों को इंजॉय करें, ये अल्लाह की नेमत होती है, और इनकी नाशुक्री से इंसान की अपनी जिंदगी भी बेकार हो जाती है। इसीलिए कहा वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को भटका देता है, और अल्लाह को इख्तियार है जो कुछ वो करे। वइस काल इब्राहिम और रब्बी जल हासिल बलदा अमीना, अब इब्राहिम का तस्करा है जिनके नाम पर यह सूरत है। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन वाला शहर बना। आज हमें अपने मुल्कों के लिए इस दुआ की जरूरत है। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुल्कों में अमन और चैन डाल दे, और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने बहुत सारों को गुमराही में डाल दिया, मुमकिन है मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दें। बस इनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे तरीके के खिलाफ चले तो तू यकीनन दरगुजर करने वाला और मेहरबान है। हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बच्चों को इस घर की तरफ जोड़ दे, उनके दिल इधर मायल हो। आज मुझे और आपको भी दुआओं की जरूरत है कि अल्लाह हमारे मर्दों के दिल मस्जिदों की तरफ मायल हो जाएं, हमारी औरतों और बच्चों के दिल मदरसों की तरफ मायल हो जाएं, फिर इंशाल्लाह नसीब बदलेगा और खैर के रास्ते खुलेंगे। फिर अपनी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब तक दीन वाले कुर्बानियां नहीं देंगे दुनिया वालों को खैर नहीं मिलेगी। इसलिए फरमाया रब बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मैंने एक बेआबो गया वादी यानी जिसमें ना पानी है ना कोई फसल उगती है, अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुख्तरम घर के पास ला बसाया। परवरदिगार ये मैंने इसलिए किया कि ये लोग यहां नमाज कायम करें, पस्त लोगों के दिलों को इसका शौक लगा दे और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। इब्राहिम ने अल्लाह का घर बसाने के लिए बुढ़ापे में अपने घर को बेकार कर लिया। बीवी बच्चे के बगैर घर घर थोड़ी होता है, लेकिन इब्राहिम को पता था कि ये काबा आबाद तब होगा जब मैं ये कुर्बानी दूंगा। आज फिर उसी काबा की आबादी की जरूरत है। आज अगर हम थोड़ा सा अपने घरों के स्केड्यूल को, रूटीन को इधर उधर करके इस दुआ को पाने के काबिल हो जाएं, आप देखिएगा जिस तरह आज काबा की तरफ लोग भागे जा रहे हैं ना, इसी तरह इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इस इस्लाम की तरफ लोग जौक दर जौक आएंगे और अल्लाह ताला हमें इसका जरिया बना दे। फिर फरमाया, परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, न जमीन में न आसमानों में। शुक्र है इस जात का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे अता किए। हकीकत यह कि मेरा रब जरूर दुआओं को सुनता है। कोई जितना भी बूढ़ा हो जाए, बीवी 40s छोड़ दीजिए, 50s छोड़ दीजिए, मीनोपॉज छोड़ दीजिए, 60, 70, 80 की भी हो गई ना, वो भी औलाद की नेमत से अगर महरूम है तो मायूस ना हो, वो दे सकता है। कुमारी मरियम को दे सकता है ना, बूढ़े इब्राहिम को दे सकता है ना, बूढ़े जकरिया को दिया, बूढ़ी सारा और हाजरा को दिया, तो फिर अल्लाह क्यों नहीं दे सकता। तो आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह नेक साले औलादें अता फरमा उनको जिनको नहीं दिया, और वो उन औलादों की बेहतरीन परवरिश कर सके और कदरदानी कर सके। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। हाईलाइट करेंगे, आपके लिए इब्राहिम ने दुआएं की हैं। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर, परवरदिगार मुझे और मेरे वालदैन को और सब ईमान लाने वालों को इस दिन माफ कर देना जबकि हिसाब कायम हो। आइए हम भी जरा अपने प्यारों को याद करके इस दुआ को पढ़ लें, मेरे साथ पढ़िएगा। रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तकब्बल दुआ। रब्बना अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, आमीन। ए अल्लाह, हमने कुरान के दौरान ये दुआ पढ़ी है, इस दुआ के एक एक लफ्ज़ को हमारे ऊपर लगा दे। वला तखसबनल्लाहा गाफिलन, अब ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को इससे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो इनको टाल रहा है इस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोचिए, मुहतेन मुक्नई रोसिहिम, सर उठाए भागे चले जा रहे हैं, नसरें ऊपर जमी हुई हैं और दिल उड़े जा रहे हैं। ए नबी, इस दिन से तुम इन्हें डरा दो जबकि अजाब इनको आ लेगा। इस वक्त ये जालिम कहेंगे, ए हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत पर लब्बैक कहें और रसूलों की पैरवी करें। आज अभी मोहलत है जिसका कल लोग हसरत के साथ जिक्र करेंगे, तो आज मैं और आप इस दावत को लब्बैक कह सकते हैं। मगर इनको साफ साफ जवाब दिया जाएगा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जिससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल ही नहीं आना, हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने इनसे क्या सलूक किया, और इनकी मिसालें दे दे कर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी मगर इनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगर जिनकी चालें ऐसे गजब की थीं कि पहाड़ इनसे टल जाएं। तो आज की चालों को क्या अल्लाह नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है। जरूरत है इस बात की कि हम उस दिन की फिक्र करें। आप देखिए कि पीछे हमने इब्राहिम की कुर्बानी की बात पढ़ी, कैसे बीवी बच्चे से अलग हुए, फिर इसके बाद इब्राहिम ने ये दुआएं मांगी तो कबूल हुई ना। ये सारी जो दुआएं ना, ये हजरत इस्माइल और उनकी माँ को वहां छोड़ते वक्त मांगी थी। तो जब हम अल्लाह के रास्तों में निकलें तो ऐसी सब दुआएं पढ़ के आए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे देगा और अल्लाह ताला में इस क्यामत के दिन की सख्ती से बचाए जिसका तस्करा इन आयतों में। अब सूरत का एंड है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला तखसबनल्लाह मुखलिफ वादिही रुसुलहु। आज के तनाजर में इस आयत को सुनिए और पुर उम्मीद रहिए। پس اے نبی تم ہر کس یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، امیجن کریں قیدیوں کو، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، کتنی گرم ہوتی ہے لک جس کو بولتے ہیں جو روڈز پہ ڈالی جاتی ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا جا رہے ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، دنیا میں بھی لے رہے وہاں بھی لے گا۔ تو آخری آیت میں امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، چاہتے ہو کہ اس جہنم کا ایندھن بننے سے لوگ بچے۔ دیکھیں جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ اندر سے کہتا ہے چلو ہم تو نہیں ہیں نا، ہمیں تو نہیں ملنی، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، ہم سب مان لیتے ہیں کہ وی آل مسلم آر فائر پروف، جہنم پروف، ہیل پروف، مان لیا، ٹھیک ہے۔ چلیے کسی انسان کے بارے میں سوچیے، وہ آگ میں جل رہا ہے، اچھا لگے گا؟ ہمسایہ، کلیگ، رشتہ دار، دوست، بچے، نہیں چاہتے نا؟ تو اب آخری آیت پہ پھر عمل کریں گے۔ وَهَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لے کہ حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ کیا بتایا کہ لوگوں کو پہنچا دو، تم چاہتے ہو انسانیت اس برے انجام سے بچے، جہنم کی لک بننے سے بچے، تارکول کے کپڑے پہننے سے بچے، گندک کے کرتے پہننے سے بچے، تو اس خوبصورت دین کو عام کر دو۔ اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا کہ یہ دین عام کرنے کی چیز ہے، رائٹ؟ ہم کریں نہ کریں، ہم سے یہ کام اللہ لے لے نہ لے لے، لیکن اس پہ تو سب کا یقین ہے نا، یہ کرنے والا کام ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہم سے لے لے، اور ہماری نسلوں سے یہ کام لے لے، اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہمیں کئی طرح سے فائدے دیتے ہیں، ہم ان کو یہ ابدی فائدہ دینے والے بن جائیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹارگیٹ پورا ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔